മുക്ഷുമാർഗസ്യനീതാരം ഭീത്താരം കർമ്മഭൂഭൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയെ. सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का आलंबन लेकर तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया जा रहा है. नवम अध्याय है और नवम अध्याय में सप्तम सूत्र है. शरीरमिदम अत्यंताशुचि योनि शुक्र शोणिताशुचि संवर्धित मवस्करवद अशुचि भाजनम മമസ്കർവത് അശുചി ഭാജനം ത്വക് മാത്ര പ്രച്ഛാദിത മതിപൂതി രസ നിഷ്യന്തി സ്രോതോ വില മംഗാരവത് ആത്മ ഭാവമാശ്രിതം മപ്യാശ്വേവ ആപാദയതി. ഇദം ശരീരം യഹ ശരീര अत्यंत अशुचि योनि, अत्यंत अशुचि वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान है. इस शरीर से अपवित्र वस्तुएं उत्पन्न होती रहती हैं. शुक्र शोणिताशुचि संवर्धितम्, शुक्र और शोणित का अर्थ होता है रज, रक्त. शुक्र शोणित इन अशुचि पदार्थों से यह संवर्धित है, अर्थात वृद्धि को प्राप्त हुआ है. माता के गर्भ में यह विकसित हुआ है. और अवस्करवद अशुचि भाजनम, यह अवस्कर का अर्थ होता है शौचालय. उसके समान ये अशुचि का भाजन अर्थात एक बर्तन है. और त्वंग मात्र प्रच्छादितम, चर्म मात्र से ये आच्छादित है. अतिपूति रस निष्यंदी स्रोतो विलम, और अत्यंत पूति अर्थात दुर्गंधित रस निष्यंदी, जो स्राव होते हैं उनके झरनों का स्रोतो विलम. स्रोत है मूल है. अंगारवद आत्मभावम आश्रितम अपि, अंगार के समान अपने आश्रित को भी आश्वेव आपादयति, शीघ्र ही नष्ट कर डालता है. यानी कितनी भी पवित्र वस्तु इसमें डाल दो आप इस शरीर में, तो वो उसका उसकी पवित्रता को समाप्त कर देगा ये शरीर. ये इसका सहज स्वभाव है. यानी कुल मिलाकर के अत्यंत अशुचि योनि एक, फिर शुक्र शोणिताशुचि संवर्धितम दूसरा. शरीर के विषय में इतने सारे विशेषण दे रहे हैं, फिर अवस्करवद अशुचि भाजनम, शौचकूप के समान, शौचालय के समान अपवित्र का भाजन है ये। ये तीसरा विशेषण हुआ। तो अगमात्र प्रच्छादितम, चर्म मात्र से आच्छादित है, चौथा विशेषण हुआ। फिर पांचवा विशेषण जो है वो है अतिपूति रस निष्यंद स्रोतो विलम, अत्यंत दुर्गंधित रसों के झरने का स्रोतो विल है, अर्थात मूल ओरिजिन है। फिर अंगारवद आत्मभाव आश्रितम अपि आश्वे वापा देती, जैसे अंगार यानी धधकता हुआ अंगार होता है कोयला, वो अपने आश्रित को शीघ्र ही नष्ट कर डालता, तो वैसे ही ये शरीर भी अपने आश्रित को नष्ट कर डालता। आप भोजन डालते हो तो फिर वो भोजन शरीर में जाकर के समाप्त हो जाता है। और फिर आगे और कह रहे हैं, स्नानानुलेपन धूप प्रघर्ष वास माल्याधिभिरपि न शक्यम अशुचित्वम अपहर्तुमस्य। इसकी अपवित्रता स्नान के द्वारा, अनुलेपन के द्वारा, धूप के द्वारा, यानी किसी कक्ष में धूप प्रज्वलित करके उसके धुएं में आप बैठे रहो घंटे भर, तो भी ये शरीर की अशुचिता का अपहरण नहीं होगा। धूप प्रघर्ष, फिर इसको घिस घिस करके भी कुछ कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। फिर वास, फिर मालिश वगैरह कर लेंगे प्रघर्ष वगैरह, तो भी इसकी अशुचिता दूर नहीं हो सकती। माल्याधिभिरपि, वस्त्र और माला आदि के माध्यम से भी इसकी अपवित्रता दूर नहीं की जा सकती। सम्यक दर्शन आदि पुनर्भाव्यमानम, और सम्यक दर्शन आदि भाव्यमान होने पर, अर्थात सम्यक दर्शन आदि को धारण करने पर जीवस्यात्यंतिकीं शुद्धिम आविर्भावयति। अच्छा, सम्यक दर्शन आदि भाव्यमान हो तो जीव के लिए आत्यंतिक अर्थात अंतिम सीमा की शुद्धि को प्रकट करा देती है, करा देते हैं। सम्यक दर्शन आदि भावित करें रत्नत्रय, तो रत्नत्रय इस जीव के लिए चरम सीमा की शुद्धि को प्रकट कराते हैं। तत्वतो इति तत्वतो भावनम अशुचित्वानुप्रेक्षा, इस प्रकार तत्व रूप से भावित करना अशुचित्वानुप्रेक्षा है। प्रत्येक अनुप्रेक्षा के साथ इन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्व की बात को तो जोड़ा ही है। एवं यस्य संस्मरत, इस प्रकार इस तरह का स्मरण करने वाला, भली भांति स्मरण करने वाले जीव के लिए शरीर निर्वेदो भवति, शरीर के प्रति निर्वेद उत्पन्न होता है, विरक्ति बोलते हैं, निर्वेद को विरक्ति बोलते हैं, वैराग्य होता है। निर्विन्नश्च, और शरीर से विरक्त हुआ प्राणी क्या करता है, जन्मोदिति तरणाय चित्तं समाधत्ते, संसार समुद्र से तैरने के लिए, पार होने के लिए अपने मन को एकाग्र करता है। छह विशेषण दिए थे शरीर अत्यंत अशुचि से बना हुआ है, अत्यंत अशुचि को उत्पन्न करने वाला है, फिर अशुचि से बना हुआ है, शौचालय के समान अशुचि का पात्र है, त्वचा मात्र से आच्छादित है, और अत्यंत दुर्गंधित रसों के झरने का स्रोत है, और धधकते हुए कोयले के समान अपने आश्रित को ही तत्काल नष्ट करने वाला है, अपने आश्रित को भी तत्काल ही नष्ट करने वाला है। स्नान, अनुलेपन, धूप, प्रघर्ष, वास, माल्यादि के माध्यम से भी अस्य अशुचित्वम् अपहर्तुम् न शक्यम्, इसकी अशुचिता का अपहरण अशक्य है। शरीर के स्वभाव का चिंतन कर लिया, अब सम्यक दर्शन आदि पुनर्भाव्यमान हो, और सम्यक दर्शन आदि भाव्यमान हो तो जीव के लिए आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट कराते, आविर्भावयति, जीव की अंतिम शुद्धि को, चरम शुद्धि को भी प्रकट कराते हैं। इस तरह से तत्व रूप से भावना भावित करना अशुचित अनुप्रेक्षा है। इससे शरीर के प्रति निर्वेद होता है, वैराग्य होता है, और शरीर से विरक्त जीव संसार समुद्र से तैरने के लिए अपने मन को लगाता है। क्योंकि जब तक शरीर रास आ रहा है तब तक इसको छोड़ने का मन नहीं होता है। आश्रव संवर निर्जराह पूर्वोक्ता अपि, आश्रव संवर निर्जरा पहले बतला चुके हैं तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में, सात तत्व जहां पर आए थे ना, वहां पर आश्रव संवर निर्जरा बताई जा चुके हैं। फिर भी यह उपन्यस्यन्ते, यहां पर उपस्थित किए जाते हैं ये तीनों, तद्गत गुण दोष भावनार्थम, क्योंकि आश्रव में जो दोष है, संवर निर्जरा में जो गुण है, उनको भावित करना है यहां पर। तद यथा, वो इस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, आश्रवा यहा मूत्रापाय युक्ता, आश्रव यहां और वहां संकट से युक्त है। महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्णा, महानदी के स्रोत के वेग के समान तीक्ष्ण है, तीखे हैं आश्रव। इंद्रिय कषाय आव्रत आदय, इंद्रिय कषाय अव्रत आदि की आश्रव है तत्र, उनमें। अब देखो मिथ्यात्व क्यों नहीं लिखा आश्रव, क्योंकि ये मुनिराज भावित कर रहे हैं, इसलिए मुनिराज की भूमिका उसके ऊपर की है। तावत स्पर्शन आदि नहीं, फिर इंद्रिय जो है वो स्पर्शन आदि हैं, और वन गज वायस पन्नग पतंग हरिणादीन व्यस नारणवम अवगाहयंती, ये एक एक इंद्रियां, एक एक इन प्राणियों के जो नाम लिखे हुए हैं उनको संकट के समुद्र में डुबा देते हैं एक एक इंद्रिय। वन गज जंगली हाथी को स्पर्शन इंद्रिय संकट सागर में डाल देती है, एक हाथिनी को वहां बांध देते हैं सामने, और वह हाथी उसके मुंह से स्पर्शन का सुख प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ आता है, और बीच में जो गड्ढा है घास फूस से पूरा ढका हुआ है वो उसको दिखाई नहीं देता और अंदर चला जाता है। फिर कई दिनों तक उसको भूखा रखते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा वो महावत ला करके उसको भोजन कराता है, तो वो उसका गुलाम बन जाता है कि ये मेरा हितैषी है, और जीवन भर वो जंगली हाथी एक दुर्बल मनुष्य का दास हो जाता है। ये स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होने का परिणाम है। फिर वायस, वायस जो होता है वो कौवा है, कौवे का दृष्टांत कैसे घटित करना होगा, सर्प, पतंग और हरिण, वायस और सर्प को लगाना होगा। वायस रसना इंद्रिय से, यहाँ पर वायस का अर्थ मत से भी लिया जा सकता है। अभी देखते हैं अपन, कोश में यदि मत से अर्थ हो इसका तो सरल हो जाएगा। इसकी खोज करनी होगी, अभी स्मृति में नहीं आ रहा। तो कौवा रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर संकट समुद्र में डूब जाता है, फिर पन्नग अर्थात सर्प है। नहीं, यहाँ पर लिखा है कि घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर पन्नग संकटग्रस्त हो जाता है, फिर पतंग जो है वो ये प्रकाश के जो कीड़े होते हैं ना, बिजली के या दीपक आदि में रात्रि में जो प्रकाश में आकर्षित होते हैं, वो जब दीपक के पास आते हैं तो फिर उसकी लौ में जल करके नष्ट हो जाते हैं, और जब ऐसे कृत्रिम प्रकाश में आते हैं तो छिपकलियों के मुंह में नष्ट हो जाते हैं। छिपकलियां इसके आसपास तैयार बैठी रहती है। और हरिण जो है, हिरण नाम का जानवर है, वो संगीत से प्रभावित हो जाता है। ऐसे माउथ ऑर्गन बजाओ तो हिरण एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं, फिर वो शिकारी लोग पकड़ लेते हैं उसको। और भी कई वाद्य हैं। तो जैसे ये एक एक इंद्रियों के वशीभूत एक एक प्राणी संकट सागर में डूब जाते हैं, इंद्रियां उनको संकट समुद्र में डुबा देती हैं, तथा उसी प्रकार कषायादयोपीह, इस जगत में कषायादिक भी यहाँ वद बंधापयश परिक्लेशादीन जनयंती, पिटाई बंधन अपयश और परिक्लेश आदि को उत्पन्न करते हैं। यानी अगर व्रती भी इसमें पड़ जाए तो फिर ऐसी स्थिति बन सकती है कि उनसे मारपीट हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है, उनको बांध दिया जाए, उनका अपयश हो जाए, उनको परिक्लेश आदि हो जाए, बहुत तकलीफें हो सकती है। अमूत्र च, और वैसे यहाँ तो सामान्य वर्णन समझा जा सकता है कि आगामी भव में भी नाना गतिषु बहुविध दुख प्रज्वलितासु, बहुत प्रकार के दुखों से प्रज्वलित विभिन्न गतियों में परिभ्रमयंती तेवमाश्रव दोषानुचिंतनमाश्रवानुप्रेक्षा। ये इंद्रियां उन गतियों में परिभ्रमण कराती हैं, इस तरह आश्रव के दोषों का अनुचिंतन करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य चिंतयतः क्षमादिषु श्रेयस्तु बुद्धिर् न प्रच्छेवते, इस प्रकार इसका चिंतन करने वाले साधु को क्षमादिक के प्रति जो श्रेयस्तु बुद्धि, मतलब कल्याणकारी क्षमादिक ही है, इस तरह की जो मान्यता है वह न प्रच्छेवते, छूटती नहीं है, उसी में उनका मन लगा रहता है, उनकी धारणा वहीं स्थिर रहती। सर्व एते आश्रव दोषा कुर्मवत संवृतात्मनो न भवन्ति, ये सभी के सभी आश्रव संबंधी दोष, सर्वे एते ऐसे संधि विग्रह होगा उसका, सर्व एते संधि हुई है, तो यह सारे आश्रव दोष कुर्मवत संवृतात्मनो न भवन्ति, कछुए के समान संवर को प्राप्त आत्मा के लिए नहीं होते। यथा महारणवे नावो विवर पिधाने सति क्रमात् श्रुतजलाभिप्लवे सति तदाश्रयाणां विनाशो वश्यं भावी। जिस प्रकार महासागर में नाव के विवर पिधाने असति, छिद्रों के बंद न होने पर क्रमशः श्रुतजलाभिप्लवे अंदर प्रविष्ट होने वाले जल से भर जाने पर सति तदाश्रयाणां विनाशो वश्यं भावी, उस नाव के आश्रितों का विनाश निश्चित हो जाता है। छिद्र पिधाने च, और उन छेदों को बंद कर देने पर निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम, बिना किसी उपद्रव के अभिलषित यानी अभिनभीष्ट क्षेत्र, क्षेत्रांतर का अर्थ होता है किसी अन्य स्थान पर जहां जाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। तथा उसी तरह कर्मागम द्वार संवरणे सति, कर्मों के आगमन द्वार का संवरण हो जाने पर नास्ति श्रेय प्रतिबंध, कल्याण में कोई रुकावट नहीं आती। इति संवर गुणानुचिंतनम संवर अनुप्रेक्षा, इस तरह से संवर के गुणों का बारंबार चिंतन करना संवर अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य चिंतयत संवरे नित्योद्युक्तता भवति, इस प्रकार इसका चिंतन करने वाले के लिए संवर के प्रति नित्य ही उद्युक्तता बनी रहती है, अर्थात उद्यम बना रहता है, पुरुषार्थ बना रहता है। ततश्च, और उसके कारण निःश्रेयस पद प्राप्ति रीति, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मोक्ष का एक नाम निःश्रेयस भी है, उस दिन मोक्ष की चर्चा चली थी तो फिर ये नाम छूट गया था ना, निःश्रेयस। श्रेयस का अर्थ कल्याण है, निःश्रेयस यानी पूर्णतः निःशेष रूप से कल्याण, पूर्ण कल्याण, चुकता कल्याण, निःश्रेयस का अर्थ होता है। अभी हम भी सोच रहे थे कि निःश्रेयस का क्या अर्थ हो सकता है, लेकिन ये अर्थ है। निर्जना वेदना विपाक इत्युक्तम, निर्जरा का अर्थ क्या होता है, जो कर्म की वेदना का जो रूप विपाक होता है, कर्मों को भोगने रूप जो विपाक होता है उसको निर्जरा कहते हैं, क्योंकि भोगने के बाद कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, भोग लिया तो फिर वो अलग छूट जाते हैं। साध्वेदा, उसके दो भेद हैं, अबुद्धिपूर्वा कुशल मूला चेति, अबुद्धिपूर्वा यानी बिना अपनी धारणा के अपने आप चली रही अनादिकाल से वो, और दूसरी कुशल मूला होती है जो कुशल का कारण बन जाती है। तत्र उसमें नरकादिषु गतिषु कर्म फल विपाकजा अबुद्धिपूर्वा सा अकुशल अनुबंधा, नरकादिक गतियों में कर्म फलों के विपाक से उत्पन्न होने वाली अबुद्धिपूर्वक निर्जरा है वह अकुशल अनुबंध है, अकुशल से संपर्क कराने वाली है। अनुबंध का अर्थ संपर्क होता है, तो अकुशल से संपर्क जोड़ने वाली है यानी संसार में ही रखने वाली है वो निर्जरा। परिषय जय कृते कुशल मूला, परिषयों पर विजय प्राप्त कर लेने पर कुशल मूल निर्जरा होती, कुशल मूला सा शुभानुबंध, वह शुभानुबंध होती है, अर्थात पुण्य का आश्रय कराती है। निरनुबंधा चेती, और निरनुबंधा भी होती है, कर्म बंध से रहित भी हो जाती है वो निर्जरा। जब पूर्ण संवर के साथ निर्जरा होगी तो निरनुबंधा होगी, और बाकी शुभानुबंधा होगी, पुण्य का बंध भी रहेगा उसके साथ में। निर्जरा तो हो ही रही है पर उसके साथ ये हो रहा है। इत्येव निर्जराया गुण दोष भावनम, इस तरह निर्जरा के गुण और दोष का की भावना करना निर्जरानुप्रेक्षा है, निर्जरानुप्रेक्षा है। एवं यस्यानुस्मरत कर्म निर्जरा यही प्रवृत्तिर्भवति, इस प्रकार इस निर्जरानुप्रेक्षा का अनुस्मरण करते हुए करने वालों के कर्म निर्जरा के लिए प्रवृत्ति होती है, पुरुषार्थ होता है। लोक संस्थान आदि विधिर व्याख्यात, लोक के संस्थान आदि की जो प्रक्रिया है वो हम बता चुके हैं, व्याख्यान में आ चुकी है। समन्तादनन्तस्यालोकाकाशस्य सब तरफ से अनंत अलोकाकाश के बहुमध्य देश भाविनो, बिल्कुल बीचों बीच रहने वाला लोकस्य, संस्थान आदि विधि व्याख्यात है। लोक की जो संस्थान आदि की प्रक्रिया है वो व्याख्या में बता चुके हैं। तत्स्वभाव अनुचिंतनम लोकानुप्रेक्षा, उसके स्वभाव का अनुचिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। एवं यस्यात्यवस्यतः, इस प्रकार इसका चिंतन करने वालों के तत्व ज्ञान विशुद्धिर भवति, तत्व ज्ञान की निर्मलता होती है। लोक के संस्थान आदि का चिंतन, वहाँ अलग अलग स्थानों पर जिनालयों का भी वर्णन आता है ना, क्लेश के स्थानों का, सुख के स्थानों का, सबका वर्णन आता है। तो तत्व ज्ञान की निर्मलता होती है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं लोकानुप्रेक्षा से। एक एक अनुप्रेक्षा का व्यवस्थित वर्गीकरण किया जा सकता है। इतने सुंदर ढंग से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वर्णन किया इसका कि किस अनुप्रेक्षा से क्या परिणाम निकलता है। अनुप्रेक्षा का नाम, अनुप्रेक्षा का स्वरूप, फिर अनुप्रेक्षा का फल, ऐसे लिख करके चार्ट बन सकता है। अब इसके बाद बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। एकस्मिन् निगोत शरीरे जीवा सिद्धानाम अनंत गुणा, एक निगोत शरीर में जीव सिद्धों के अनंत गुणे हैं। एवं सर्वलोको निरंतरम निचितस्तावरै रतस तत्र त्रसता वालुका मध्ये पतिता वज्रसिकता कणिकेव दुर्लभा। एक निगोत शरीर में सिद्धों के अनंत गुणित जीव हैं, और निगोत शरीर बहुत सूक्ष्म होते हैं। आचार्य कहते हैं कि सारा लोक बिना किसी अंतराल के स्थावरों से ठसा ठस भरा हुआ है। तो यहां पर आचार्य महाराज का अभिप्राय यही है कि निगोत शरीर वाले जो जीव हैं वे सब स्थावर हैं और उनसे सारा जगत भरा हुआ है। ऐसी प्रत्येक वनस्पतियां हर जगह नहीं मिलती है, पर ये साधारण वनस्पति पूरे लोक में भरी हुई है। तो ऐसे सभी स्थावरों से, यहां पर अकेले एक स्थावर की बात नहीं कर रहे, सभी स्थावरों से ये ठसा ठस भरा हुआ है पूरा जगत। तो तत्र उसमें बालू का समुद्र, रेत का समुद्र यानी रेगिस्तान में, जिस प्रकार रेगिस्तान में पतिता वज्र सिकता कणिकेव, वज्र यानी हीरा और सिकता यानी जो रेत का कण होता है उसकी कणिका के समान, यानी एकदम एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा जो बिल्कुल बालू जैसे ही, बालू के बराबर आकृति का है, वो अगर रेगिस्तान में गिर जाए तो उसको ढूंढना कितना मुश्किल है। तो आचार्य कहते हैं दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, कि वहां से निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एक जीव अगर त्रस पर्याय से वापस निगोद में चला जाता है तो अगर वो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो ढाई पुद्गल परिवर्तन काल तक के वो वहां रह सकता है, उसके बाद वहां से फिर वापस आ जाएगा व्यवहार राशि में। उसको चतुर्गति निगोद या इतर निगोद कहते हैं। तत्र च, अब त्रस पर्याय मिल रही है तो उसमें भी विकलेन्द्रियाणाम भूयिष्ठत्वात्, विकलेन्द्रीय जीवों की बहुलता है। आप देखते हैं मच्छर चीटियां और कीड़े मकोड़े, मक्खियां मधुमक्खियां, इनकी भरमार है। तो इनकी अधिकता के बीच पंचेंद्रियता, पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करना गुणेशु कृतज्ञतेव कृच्छ्र लभ्या, जैसे गुणों में कृतज्ञता नाम का गुण है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अनेक गुण होते लोगों में, लेकिन अपने उपकारी को जीवन भर याद रखना ये गुण बहुत मुश्किल होता है, दुर्लभ गुण होता है। तो उसके समान कृच्छ्रलभ्य मुश्किल से प्राप्त होती है पंचेंद्रीय पर्याय। त्रस पर्याय में पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तत्र च पंचेंद्रियों में भी तिर्यक्षु तिर्यंचों में पशु मृग पक्षी सरीसृपादिषु बहुषु सत्सु, ये बहुत अधिक हैं। तिर्यंचों में पशु अधिक हैं, मृग यानी और दूसरे जो जंगली जानवर होते हैं हिरण वगैरह, पक्षी हैं सर, ये पीछे देखो आप तालाब के उस बगुलों की भरमार है। कई बार मैना वगैरह उड़ते हुए दिखती हैं शाम को, पूरा आकाश आच्छादित होता है उन पक्षियों से, इतने पक्षी। फिर सरीसृप का अर्थ रेप्टाइल होता है, जो पेट के बल रेंगते हुए चलने वाले जीव जंतु, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ये सब। बहुषु सत्सु, इनकी बहुलता होने पर मनुष्य भावश मनुष्य पर्याय कैसी दुर्लभ है। तो आचार्य कहते हैं चतुष्पथे रत्न राशिरिव दुरासद, चौराहे पर आपको कोई हीरा माणिक मोती या कोई ऐसी सुंदर रत्नों की राशि मिल जाए, यानी चौराहे पर जहां भीड़ भाड़ आवागमन जारी है वहां रत्नों का कोई ढेर मिल जाए आपको, बहुत मुश्किल है। वैसे ही पंचेंद्रियों में मनुष्य पर्याय मुश्किल से मिलती है। तत्प्रच्छवीच पुनः तदुत्पत्तिर दग्ध तरुपुद्गल तद्भावोपपत्तिवत दुर्लभा, और मनुष्य पर्याय छूटने के बाद उसकी पुनः प्राप्ति और दुर्लभ है। किसके समान? तो बोले दग्ध तरु, कोई पेड़ जल गया और जल जाने के बाद उन्हीं परमाणु से फिर वो पेड़ बन जाए, असंभव नहीं है, बहुत काल में बन सकता है, क्योंकि वो परमाणु क्या राख बन जाते हैं, कुछ कुछ धुआं बन जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं प्रकृति में, पर वापस उन्हीं परमाणुओं का फिर से वैसा समागम हो जाए और नया पेड़ वैसा का वैसा खड़ा हो जाए तो कितना मुश्किल है। वैसे ही मनुष्य पर्याय खोने के बाद फिर से प्राप्त करना उतना ही दुर्लभ है। तल लाभेच, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेने पर भी देश कुलेन्द्रिय संपन्न संपत निरोग निरोगत्व देश कुलेन्द्रिय संपन्न निरोगत्वान्युत्तरोत्तरतोति दुर्लभानि। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य पर्याय फिर से मिल भी जाए पर फिर भी मनुष्य पर्याय में अच्छा देश मिलना जहां सच्चा धर्म, जहां तीर्थंकर का तीर्थ विद्यमान हो, ऐसा स्थान मिलना, ऐसा क्षेत्र मिलना, फिर कुल मिलना श्रावक कुल, फिर इंद्रियां मिलना अथवा इंद्रिय रूपी संपत्ति मिलना अथवा इंद्रियां और संपत्तियां मिलना, फिर निरोगत्व रोग रहित होना, ये सब उत्तरोत्तर तो अति दुर्लभानि। आगे आगे ये देश से अधिक दुर्लभ कुल है, कुल से अधिक दुर्लभ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से अधिक दुर्लभ संपत्ति है, उससे अधिक दुर्लभ निरोगता है, ये सब अधिक अधिक दुर्लभ है। और उसके बाद कहते हैं सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु, ये सब मिल भी गए पर इन सब के मिलने पर सद्धर्म प्रतिलंबो यदि न स्यात् सच्चे धर्म की प्राप्ति यदि नहीं होती, व्यर्थम जन्म, वो भव जीवन व्यर्थ हो जाता है। किसके समान? वदन में वो दृष्टि विकलम, आंखें न हो और चेहरा सुंदर हो उसके समान। माने आंखों से देख नहीं रहा, चेहरा एकदम सुंदर है उसके समान है। तमेव कृच्छ्र लभ्यम धर्म अवाप्य, और उसी कठिनता से प्राप्य धर्म को पाकर, विषय सुखे रंजनम, विषय सुख में राग करना भस्मार्थम चंदन दहनम में विफलम। बोले राख को पाने के लिए चंदन की लकड़ी जलाने के समान निरर्थक हो जाता है। यानी धर्म मिल गया लेकिन फिर भी विषयों के प्रति धर्म से ज्यादा प्रीति है, तो ये ऐसी स्थिति है जैसे राख चाहिए किसी को बर्तन मांजने के लिए, अब कहां से लाए, राख मिल नहीं रही है, तो वो चंदन की लकड़ी जलाओ 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 जलाओ, इसको जल्दी से राख मिल जाएगी, इससे अपन मांज लेंगे बर्तन। तो उस चंदन की लकड़ी को जला करके राख प्राप्त करके फिर बर्तन मांजता है उसके समान। विरक्त विषय सुखस्य तु, और जो विषय सुख से विरक्त हो चुके हैं उनको भी कुछ चीजें दुर्लभ हैं। क्या? तो बोलते हैं तपो भावना, तपश्चरण की भावना दुर्लभ है। धर्म प्रभावना, धर्म की प्रभावना दुर्लभ है। फिर सुख मरण आदि लक्षण समाधि, तो तपो भावना, धर्म प्रभावना और सुख मरण आदि है लक्षण जिसके, ऐसी समाधि दुरवाप बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। माने समाधि के अंतर्गत ये सुख मरण को भी लिया गया है, धर्म ध्यान पूर्वक मृत्यु हो जाए तो उसको भी समाधि कहते हैं, फिर धर्म प्रभावना करने को भी समाधि कहते हैं, तपो भावना करने, तपश्चरण का आचरण करने को भी समाधि कहते हैं। तो ये समाधि दुर्वाप बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, वैराग्य होने के बाद भी ये समाधि और दुर्लभ है। फिर तस्मिन सति बोधि लाभ फलवान, समाधि हो तो फिर बोधि का लाभ यानी रत्नत्रय की प्राप्ति फलीभूत होती है, वो उसका फल मिलता है। इति चिंतनम बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा, ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा है। एवं व्यस्य भावयतु, इस तरह से इसकी भावना करने वाले, इस भावना करने वाले जीव के लिए बोधिम प्राप्य प्रमादो न कदाचित अपि भवति, रत्नत्रय को प्राप्त करने के बाद कभी प्रमाद नहीं हो सकता। यदि इसका चिंतन करते रहें तो फिर कभी भी लापरवाही नहीं होगी, एकदम सतर्क रहेंगे। ये कितनी मुश्किल से ये चीज़ें मिली है और इसको खोने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे सतर्क बैठना भी सतर्क अच्छा रहता है स्वाध्याय में। अयम जिनोपदिष्टो धर्मो हिंसा लक्षण, यह जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म जो है उसका नाम अहिंसा है। भगवान ने अहिंसा धर्म का उपदेश किया है। और कैसा है वो? सत्याधिष्ठित हो, सत्य का आधार है, अथवा सत्य उसका आधार है। विनय मूलम, और उसकी जो जड़ें हैं वो विनय है। यानी धर्म की जड़ विनय है, अगर विनय चली गई तो फिर वृक्ष सूख जाएगा। क्या सुंदर वचन है आचार्य पूज्यपाद स्वामी के, सुनते समय ऐसा लगता है कि किस पुण्य के उदय से अपने को ये सुनने मिल रहा है। सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा बलो उसकी ताकत क्या है, क्षमा, कुछ भी हो जाए कषाय क्रोध नहीं करना, क्षमा है, जाने दो जो भी हो रहा है होने दो, मेरी कर्म का फल है ना, कोई बात नहीं। आज मैं जिससे जिस पर क्रोध करना चाह रहा हूं वही तो मैंने किया था, तो आज तो वो रिप्ले हो रहा है, यानी रिप्ले करने वाला कोई और है, मैंने जो किया था वो कर रहा है, तो मैं क्यों क्रोध क्यों करूं, वो तो मेरी नकल कर रहा है। तो अगर कोई मेरी नकल करे, मैंने ऐसे मुंह बिगाड़ा किसी के सामने, या फिर ऐसे कुछ हाथ हाथ किए जैसे करते हैं लोग आजकल, तो वो सामने वाला अगर वैसा करता है तो मैं क्या उसको मारने पीटने लग जाऊं? नहीं। तो फिर ऐसी कोई भी स्थिति सामने आती तो समझ लेना कि ये मेरा पास्ट है, मेरा अतीत है, ऐसा मैं कर चुका हूं। बस जो भी सामने देखे तो समझना मैं कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं। क्षमा, क्रोध लाना ही नहीं है, वो उसका बल है। जैसे ही आपने क्रोध किया तो निर्बल हो गए, और जैसे ही आपने क्षमा की तो बल हो गया। धर्म का बल क्षमा है। ब्रह्मचर्य गुप्त है, और ब्रह्मचर्य उसका गुप्त यानी प्रोटेक्शन है, उसका उसकी सुरक्षा है। ब्रह्मचर्य होगा आपके पास तो धर्म की रक्षा होगी। उपशम प्रधानो, और शांति से, शांति इसमें प्रधान होती है धर्म में। धर्म जिसके पास है वो अशांत नहीं होता है। बहुत सुंदर बात है, शांत रहता है। और नियति लक्षण, नियति उसका लक्षण है। नियति का अर्थ क्या होता है? यहां पर जो नियति नए अथवा जो लोक में मान्य नियति है, वो तो एक प्रकार से होनी को नियति कहते हैं। होनी यानी होनहार, बस ऐसा ही होना था इसलिए हो गया, अब क्या कर सकते हो। ये वो वाली नियति यहां ना लेकर यति यमनम यति नितरांग यमनम नियति, ये अर्थ लेना है। क्योंकि यहां पर आचार्य महाराज चारित्तम खलु धम्मों को भी घटित करना चाह रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं वो। बहुत प्रकार से वर्णन चल रहा है धर्म का, तो ये बात भी यहां जोड़ने की अनिवार्यता थी, इसलिए उन्होंने नितराम यमनम नियति और नियति लक्षण यस्य स नियति लक्षणों धर्म। नियति का अर्थ क्या हो गया? नितराम यमन, यम किसको कहते हैं? महाव्रत को, अणुव्रत को। तो ये उसका लक्षण है, अर्थात धर्म जो होता है वो रत्नत्रय रूप होता है। दर्शन ज्ञान मात्र नहीं, चारित्र भी साथ में होता है, वो धर्म का लक्षण है। निष्परिग्रहता आलंबन, और परिग्रहों का त्याग उसका आलंबन सहारा है धर्म का। परिग्रहों का आलंबन लेंगे तो धर्म का सहारा छूट जाएगा, और परिग्रहों का आलंबन छोड़ेंगे तो धर्म को सहारा मिल जाएगा। अस्यालाबाद अनादि संसारी जीवा परिभ्रमंती, इसकी प्राप्ति न होने के कारण अनादि संसार में जीव भटक रहे हैं। दुष्कर्म विपाकचम दुखम अनुभवंती, दुखम अनुभवंतः, और पाप कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुख का अनुभव करते हुए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अस्य पुनः प्रतिलंबे, और इसकी प्राप्ति हो जाने पर विविधाभ्युदय प्राप्ति पूर्विका निःश्रेयस उपलब्धिर नियतेति चिंतनम धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा। इसकी प्राप्ति होने पर विविध प्रकार के सांसारिक सुख पूर्वक निःश्रेयस की, यानी वो सांसारिक सुख प्राप्त होंगे लेकिन वो सुख पूर्वक शब्द जो लिखा ना, वो मोक्ष के लिए कारण बनेंगे आगामी काल में क्रम से। सांसारिक सुख पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। बोले सांसारिक सुख तो मिलता है धर्म से, लेकिन वो सांसारिक सुख उसको संसार में अटकाते नहीं है, वो उसको उस दिशा में ले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इस प्रकार से धर्म है सुंदर नाम जिसका, उसके तत्व अर्थात स्वरूप की अनुप्रेक्षा होती है। एवं यस्य चिंतयतः, इस प्रकार इसका चिंतन कर। अब देखिए, अपन ने पहले जो अर्थ निकाला था सूत्र का, वो थोड़ा सा चूक पूर्ण था, उसमें चूक हो गई थी। ये स्वाख्या तत्व शब्द जो है धर्म अनुप्रेक्षा के साथ ही लगाना है, सबके साथ नहीं लगाना, क्योंकि सबके नाम स्वाख्या नहीं है, सुंदर आख्या अर्थात सुंदर संज्ञा वाले नहीं है। धर्म नाम सबसे सुंदर है, अनित्य नाम सुंदर लगता है क्या किसी को? अशरण नाम सुंदर लगता है क्या? अशुचि नाम कभी सुंदर हो सकता है सपने में भी? आश्रव नाम अच्छा लगता है क्या? कोई अपने बच्चे का नाम रखता है क्या आश्रव? तो ये सब सारे नाम सुंदर नहीं है, धर्म नाम सुंदर है। तो अपनी भूल सुधार करते हैं अपन जिनवाणी माता से क्षमा पूर्वक, क्षमा याचना पूर्वक। तो धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा, धर्म है सुंदर आख्या जिसकी जिसकी, ऐसे तत्व का अनुप्रेक्षा है ना, उसकी अनुप्रेक्षा अनुचिंतन करना। अब एवं यस्य चिंतयत धर्मानुरागात, इस प्रकार चिंतन करने वाले इस प्राणी के लिए धर्मानुराग के कारण सदा प्रतियत्नु भवति, हमेशा प्रतियत्न चलता रहता है, एक पुरुषार्थ बना रहता है, ढील नहीं होती, सावधानी बनी रहती है। इस तरह 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन पूरा होता है। एवं अनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षा सन्निधाने उत्तम क्षमादि धारणान महान संवरो भवति, इस प्रकार अनुप्रेक्षाओं के सानिध्य में 10 धर्मों को धारण करने से महान संवर होता है। मध्येनुप्रेक्षा वचन उभय अर्थम, अनुप्रेक्षा को बीच में रखा है संवरों में, तो वो दोनों तरफ जाती है। परिषय है उस तरफ है अनुप्रेक्षा के, और इस तरफ 10 धर्म है, तो 10 धर्मों में भी अनुप्रेक्षा सहायक होती है और परीक्षाओं को जीतने में भी अनुप्रेक्षा सहायक होती है, इसलिए अनुप्रेक्षा को बीच में रखा है। अनुप्रेक्षा ही भावयन उत्तम क्षमादींश प्रतिपालयति, अनुप्रेक्षा को भावित करने वाले जीव उत्तम क्षमादिकों की रक्षा करते हैं, और परीक्षाश्च जेतुम उत्सहते, परीक्षाओं को जीतने के लिए उत्सुक हो जाते हैं अनुप्रेक्षा को भावित करने वाले। इस तरह आज के स्वाध्याय में अनुप्रेक्षाओं का विवरण पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम।